कौन कर रहा है, इन पे मुकदमे चल रहे हैं, इनकी आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है अभी भी जमानतों पे है। मैं मुझे इस बात में कोई गर्ज नहीं है। मसला यह है कि आपके मुल्क के अंदर जो निजाम चल रहा है, जिस आइन के तहत नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाई गई, उसे तो आप गैर कानूनी नहीं कह सकते, गैर आइनी नहीं कह सकते आप, वो तो आइनी है और आइनी तौर पर वो सामने आई है। इसका मतलब यह है कि अब आपका मुल्क का आइन जो है और उसमें इतना अवहम है कि इस बात पर उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि भी जो आदमी करप्शन के मुकदमे में जमानत पे हो वो उस मुल्क का कोई भी ओहदा संभाल नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता इस मुल्क के अंदर और मगरब के अंदर मैंने देखा है कि जब तक आप पे साबित ना हो जाए उतनी देर तक, आप जब तक आप साबित नहीं हो जाए उस वक्त आप मुजरम नहीं, उस वक्त आप मुजरम तो जरूर हैं लेकिन मुजरम नहीं है। लेकिन बदनसीबी यह है कि जिस जमहूरियत का नारा हम लगाते हैं बार बार, क्या वाकई जब हमारे पास अपना दौरे हुकूमत होता है तो हम वाकई इतने जमहूरी होते हैं? आप सच्ची बात पूछें तो मैं नो कॉन्फिडेंस वोट के अलावा भी अगर मैं समझता हूं ये जो लोग आए हैं, जिन नई हुकूमत जो आई है वो आइनी तौर पे आई है मेरे लिहाज से, उसके जिम्मेदार भी तो इमरान खान ही तो हैं। अगर इमरान खान साहब की कारकर्दगी इतनी अच्छी होती तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ कोई ऐसी बात होती। बेशुमार ऐसी चीजें हैं, आपका वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता। उन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में जो GITs बनाई हैं और अपने उस GIT के अंदर जो उनके अपने आदमी मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मुकदमा कर देते तो उनकी ईमानदारी को और चार चांद लग जाते और आज लोगों को और हमदर्दी उनके साथ होती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैं यहां पे क्योंकि ना तो इस नई हुकूमत की वकालत कर सकता हूं ना पुरानी हुकूमत के साथ कोई हमदर्दी कर सकता हूं जो चली गई है, ये सिलसिला है। और जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसके बारे में ये देखिए कि पकड़ दकड़ का मामला चल रहा है, पकड़ दकड़ का मामला बिल्कुल वैसे ही हमारे मुल्क चलता है, ये आज नई बात नहीं। जब भी ऐसे कोई धरने होते हैं, जब भी ऐसी बात होती है तो धरनों के या जलसे को बात हो तो ऐसी पकड़ दकड़ होती है। अब बहुत सी चीजें जो अब आप ये देखिए कि कल रात को एक क्रैकडाउन हुआ और एक मेजर है, रिटायर्ड मेजर आर्मी का, मतलब उसने सीधा कांस्टेबल की छाती पे फायर कर दिया। और उसके बाद देखिए खुदा यानी खुदा की पनाह वो बयान ये दे रहा है कि कोई बात नहीं मैं पैसे देकर छूट जाऊंगा, यानी गोया उसने एक और बात की, बारिश है माथे पे मनवाज़ पड़कर भरा बना हुआ है। मैं हैरान इस बात के ऊपर हमारा पाकिस्तान का मुआशरा जो है किस तरफ जा रहा है। अभी मेरे पास वो भी वीडियो पहुंचा है। फिर यह है कि शेर भी ऐलान कर रहे हैं इससे पहले कि यह खूनी धरना होगा, खूनी इनकलाब होगा। और नवाज जो इमरान खान साहब है, इमरान खान मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर ये वाकई इतना बड़ा जहाद है तो क्या इमरान खान साहब की अहलिया इस जहाद में शामिल है?
मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ मगर ये तो हर आदमी की औरत काम तो नहीं करती, हर बंदे का अपना मामला है, मेरा दिल करे तो मैं जाऊं, मेरा दिल करे तो मैं ना जाऊं। ये तो आप इंतहाई डोंट ब्रिंग समबडीज वाइफ, और आपसे तो मैं तवक्को भी नहीं इस बारे में करती कि आप ऐसी कोई लूज बात करें।
लेकिन सुनिए मेरी बात, मैंने क्यों कहा
रॉन्ग है सर?
नहीं, बात सुनिए, देखिए इमरान खान साहब खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि ये सियासत नहीं है ये जिहाद है, और मैं दावा दे रहा हूं कि सब
शायद सर आपको मुझे नहीं पता, क्या पता पीछे टेंट के उनकी बीवी भी बैठी हो, यू नेवर नो।
नहीं, मैं यही कहता
बीवी का भी पॉलिटिकली कैरियर है ना, वो पीछे भी जो खावर मानी का थे वो भी पॉलिटिक्स में, उनके बेटे भी पॉलिटिक्स में, उनके बच्चे और बाकी सारी फैमिली नून लीग के साथ है, इसने बेनिफिट लेने के लिए ये इमरान खान के साथ है, मतलब प्लीज डोंट ब्रिंग औरतें।
देखिए नहीं, आप मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपके तौर से लेट आई मीन योर लिसनर विल डिसाइड दिस वन, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं जो बात कह रहा हूं वो इमरान खान साहब ने इसको सियासी नहीं कहा, मतलब ये सियासी या इकतदार की जंग नहीं कहा, उन्होंने कहा ये इससे बढ़ के आजादी की जंग है, ये जहाद है।
शोर की उनकी बीवी ने क्या पता वो बैठी हो,
उन्होंने कहा कि मैं इस जानों की कुर्बानी देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इस हवाले से पूछ रहा हूँ कि अगर वो
इट माइट बी पॉसिबल हिज वाइफ माइट बी सिटिंग बिहाइंड द स्टेज।
देखिए नहीं, अगर वो मुझे पैगाम दे रहे हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में आऊं, इस जुलूस में आऊं, वहां पे पहुंचूं, अगर वो मुझे ये पैगाम दे रहे हैं, और इसका मतलब है कि मैं भी तुमसे पूछ सकता हूं कि आप मुझे पैगाम दे रहे हैं, मेरी बीवी का कुछ सियासत से ताल्लुक नहीं है, मेरी बीवी घरेलू खातून है, अगर आप फिर भी आप मुझे कहते कि मैं आऊं अपनी बीवी के साथ तो क्या आपकी अहलिया भी आएंगी? तो मेरा हक बनता है कि ये बनता पूछ रहे। फिर दूसरी बात यह है तो लोगों के बच्चों को
ये हक अगर आपका बनता है तो आप मुझे एक बात का जवाब दें कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो सारी जिंदगियां जेलों में रहते रहते मर जाते हैं। आज तक आपका किसी भी पार्टी का पॉलिटिशियन सवाए भुट्टो साहब के कौन सा बंदा है जो जेल के बीच में दो दिन की जेल की गर्मी तो खा नहीं सकते, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, दो सोटे तो खा नहीं सकते। तो सर मतलब वो गरीब और अमीर का, हाँ सर गरीब और अमीर का बिल्कुल तरीकाकार मुख्तलिफ।
देखिए मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है, मैंने अगर इमरान की बात की है इसका मतलब ये नहीं है
सर, मेरे चचा का बेटा है ही नहीं, मैं तो कहती हूँ मुझे तो
ये नहीं कि मैं मौजूदा हुकूमत का हामी हूँ, मैं इसका मतलब ये नहीं है। आप जानती हैं अच्छी तरह और मेरे सुनने वाले मुझे जानने वाले इस बात से वाकिफ है कि जब पनामा के बारे में केस शुरू हुआ था तो सबसे ज्यादा अगर कॉलम जिसने शवाहिद के साथ लिखे थे और मैं था, और मैं वो वाहिद शख्स हूं जिसके मजामीन को जीआईटी में शामिल किया गया बकायदा तौर पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए। बात ये आप इस बात पर जरा गौर कीजिए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम के तौर पर बात कर रहा हूं।
मैं मुझे ये बताइएगा कि IMF ने कहा है कि बढ़ाएं और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, ये जो गवर्नमेंट आई थी, और जब हम ये सवाल करते हैं तो इसका ये मकसद नहीं कि आप किसी की फेवर कर रहे हैं या मैं किसी, मैं व्हाट्सएप से तो कोई मैसेज के ऊपर काउंट ही नहीं करती बिकॉज दोज आर ऑल फेक मैसेजेस, चाहे वो तहरीके इंसाफ वाले बना बना के मैसेजेस डाल रहे हैं और चाहे वो दूसरी पार्टियों वाले हैं, यानी दोज आर ऑल फेक मैसेजेस। मैं तो आपके साथ शेयर किया कि वो किसी तहरीक इंसाफ वाले ने वसूद खान के नाम पे ऐसा फजूल आर्टिकल लिखा, एकदम से मैं अब उसके बारे में क्या कहूं। तो आई डोंट बिलीव इन व्हाट्सएप एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो ये तो हम काश इस टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते तो पाकिस्तान कोई चीज सुई इन्वेंट कर लेता, हालांकि सबसे आसान चीज जो नजर आती है उसे बनानी सबसे मुश्किल होती है। मगर मेरा जो इस वक्त का एक सवाल है कि ये गवर्नमेंट जब आई थी ना तो इनका जो बेसिक मामला था महंगाई का था कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई। मैं तब भी कहती थी, आपके प्रोग्राम्स में भी मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि दिस इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। आज इंडिया, और मुझे याद है जब वो रशिया भी गए थे तो आपको भी एतराज था कि रशिया जाने की क्या, ओ भाई प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग दो दिन पहले, यूं नहीं होता कि समीला भाई मैं आपके घर आ रही हूँ आधे घंटे के बाद, यहाँ तो सगे भाई के घर जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग महीनों पहले होती हैं और बाकायदा सिक्योरिटी चेकअप्स होते हैं उसके लिए। तो आज इंडिया को देखिए कितना बेनिफिट ले रहा है, आज क्वाड में भी बैठा हुआ था और 40% कम पे गैस ले रहा है, 40% कम पे गैस ले रहा है रशिया से, ना पाकिस्तान असला ले सका ना सस्ता तेल ले सका, और फिर सऊदी अरब मांग लेता है कि $3 बिलियन वापस कर दो। तो मुझे ये बताएं कि इतराज इनका यही था कि महंगाई बहुत ज्यादा है, मगर महंगाई कम तो नहीं हुई, डॉलर 181 से आज 207 के ऊपर चला गया, क्या फरमाएंगे?
पहली बात तो बहन आप तसरीफ फरमा लें कि मैं इमरान खान के रशिया के दौर के कति खिलाफ नहीं था, बल्कि मैं सबसे बड़ा हामी था कि इमरान को रशिया का दौरा जरूर करना चाहिए, बल्कि रशिया के दौरा जो था वो मशकूक हो गया था गैस पाइपलाइन की वजह से, और उसके बाद मैंने बकाया तौर पर मेरे कॉलम्स और आर्टिकल्स मौजूद हैं और मेरे टीवी के प्रोग्राम भी मौजूद हैं, मैं सबसे बड़ा हामी था और हामी हूं, और मैं इमरान के रूस के दौरे को बड़ा बरवक्त समझता हूं। मैं इमरान खान के दौरे के दिन अगर पुतिन ने अगर जंग का यूक्रेन का ऐलान कर दिया तो इसमें इमरान का मैं किसी को बिल्कुल कसूर नहीं समझता, ये पुतिन को चाहिए था कि उसके घर में एक मेहमान आया है उस दिन कम से कम वो जंग का ऐलान ना करता। बहरहाल ये एक अलग बहस हो जाएगी, पहले तो मैं आप ये तसीफ फरमा लें कि मैं अब भी उसके हक में हूं। मैं यही चाहता था कि ताकि रशिया के साथ हमारे मुलाजिम इतने बढ़ जाएं कि हम भी 30% 40% सस्ता तेल भी खरीदें, गंदम भी खरीदें और दूसरी हमारी तैयार हो, और वैसे भी खित्ते के अंदर सबसे करीब हमारे यही मुल्क है, और हमें बजाय 10,000 मील या 20,000 मील दूर देखने के खित्ते के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी तरफ देखने की तवज्जो है। ये मेरी शुरू से पॉलिसी रही है। अब आइए महंगाई की तरफ। यस, महंगाई की जब हमारे प्रोग्राम थे आप वाकई ये फरमाया करते थी कि ये इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है, वाकई बहुत महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं महंगाई चल रही है, और कोविड के बाद खासी मतलब जो अशारी हैं वो तमाम चीजों के अजनास के वो उसको तब्दील हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। لیکن میں اس بات میں میں نے کبھی نہیں یہ کہا. میں نے کہا کہ آپ جن چیزوں کو اپنی گرفت میں رکھ کے ان کی مقررہ قیمتوں پہ رکھ سکتے ہیں, ان کو مارکیٹ سے غائب نہیں ہونے دے سکتے, وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ انتظامیہ ایگزیکٹلی جو وہ کام وہ کیوں نہیں کر رہی. میرا مطالبہ صرف یہی ہوتا ہے, میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ نے چینی کے اوپر جے آئی ٹی بنائی, اس کی رپورٹ آپ نے جے آئی ٹی مقرر کی, اس جے آئی ٹی رپورٹ کا کیا بنا؟ آپ نے آٹے کی جے آئی ٹی بنائی, آٹے کے اوپر جے آئی ٹی بنائی, اس کا رپورٹ کا کیا بنا؟ آپ نے جب چینی کی بنائی, شوگر بھی جو جانگی ترین آپ کے قریبی ساتھی میں تھا الگ ہوا, لیکن آپ نے کوئی کاروائی تو نہیں کی. آپ نے آٹے کی اس کے اندر بھی بلینز اینڈ بلین چلے گئے, اس میں خسرو مختار آپ کا وزیر رہا, آخر دم تک آپ کا وزیر رہا. میڈیسن کے اوپر عامر کیانی نے جو جے آئی ٹی بنی, اس کے اندر جو ہے مطلب 151 روپے جو ہے وہ اس میں گھپلا ہو گیا, آپ نے اس کو وزارت سے تو ہٹا دیا لیکن اسے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. پیٹرولیم کا آپ نے وزیر بنایا, آپ یہ دیکھیں وہاں پہ وہ 348 ملین روپیز کا گھپلا کر گیا. آپ کی جے آئی ٹی رپورٹ آئی, آپ کی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی رپورٹس بتا رہی ہیں, اس پہ آپ نے کوئی جو ہے کوئی ان کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا, نہ اسے پکڑا نہ چھوڑا, اسے چھوڑ دیا, دوبارہ وہاں ان کو باہر چلا گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, مہنگائی کو ایک طرف رکھیں, جو جی آئی ٹی رپورٹس آپ نے بنائی ہیں, آخر ہمارے آپ نے اپنے ملک کے اداروں کا, لوگوں کا, قابل لوگوں کا وقت اس پر لگا ہے, اس کے اوپر آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہ چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, شہباز شریف ہو, میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, یہ سوال تو اٹھے گا, آپ سے پوچھا جائے گا, یہ ہر صورت میں پوچھا جائے گا. ہاں البتہ میں اب بھی اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کئی دفعہ اپنے کال میں پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں, میں کہتا ہوں میں اس بات پہ حیران ہوں, سر پیٹتا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ اپنے کرپشن کے مقدمہ بھگتنے کے لیے عدالت میں یا نیب کے دفتر میں جاتے ہیں اور ان کے حامی جو ہیں ان پہ پھولوں کی پتیاں برسا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے جب تک آپ پہ ثابت نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک آپ مجرم ہیں, مجرم نہیں ہیں, لیکن یہ بھی تو آپ کا اپنا بھی تو ضمیر اپنا اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ منع کر سکتے ہیں اپنے حامیوں کو, بھائی مجھ پہ الزام ہے, ابھی مجھے یہ ثابت کرنا ہے, میں اتنی دیر تک کوئی عہدہ نہیں لوں گا. مطلب جب
یہ سر انٹرنیشنلی تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے,
لیکن ہمارے یہاں اب ہوتا کیا ہے, اب یہ شہباز شریف زرداری سارے آئے ہیں اور آپ نے دیکھا نہیں, شہباز شریف کے آنے کے فوراً ہی بعد 3-4 دن کے بعد ایف آئی اے نے سارے مقدمے واپس لے لیے, ان کا جی ان میں ہے ہی کچھ نہیں, ہم مقدمے واپس لے رہے ہیں. یہی معاملہ عمران خان کے زمانے میں بھی رہا, وہاں پہ الیکشن کمیشن کے اندر جو ان کے مقدمے جو تھے, ان کے اندر فارن فنڈنگ کا مسئلہ تھا, مالم جبا کا تھا, بلین ٹری کا اس میں تھا, اور ہیلی کاپٹر کا تھا, بی آر ٹی کا تھا, یہ سارے مقدمے عمران خان کے زمانے میں دبے رہے, کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. اور اس سے بھی کمتر سنگین مقدمے جو ہیں ان کے لیے نیب کے لوگوں نے دوسرے اپنے مخالفین کی مشکل کس لی. میں اس لیے بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں چہروں کے نہیں نظام بدلنے کی ضرورت ہے.
تو کون بدلے گا
نظام بدلا جا سکتا ہے؟
کون بدلے گا؟ آسمان سے فرشتہ آئے گا؟
نظام وہ لوگ بدلیں گے, دیکھیں نظام وہ لوگ بدلیں گے جو با کردار ہوں, جنہوں نے اب تک 70 سال کے اندر کبھی کسی ملک میں کرپشن نہ کی ہو.
کون ہے؟ چلیں مجھے ایک کا نام بتا دیجئے گا. 3 دفعہ پیپلز پارٹی آئی, 3 دفعہ مسلم لیگ آئی, عمران خان کی حکومت اب رہ کے گئی ہے.
آپ دیکھیے, آپ 100 دفعہ اختلاف کر لیں.
نہیں نہیں نہیں, آپ مجھے بندے کا نام بتا دیں, کون بدل سکتا؟
بتاتا ہوں. آپ دیکھیے, سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کیا, اس نے کہا کہ ہمارے جب صادق امین کی بات ہوئی, ہمارے ملک میں تو ایک صرف سراج الحق ہی صادق امین ہو سکتا ہے. حالانکہ سراج الحق جو تھے عمران خان کی حکومت میں وزیر خزانہ بھی رہے, لیکن اس کے باوجود مطلب سپریم کورٹ نے صادق امین قرار دیا. اور اس کے علاوہ بہت سے اور بھی لوگ ہیں, مجھے آپ بتائیے جماعت اسلامی کے کتنے لوگ ہیں, جن ایک آدمی کا آپ نے مجھ سے ایک آدمی کا نام پوچھا, میں کہتا ہوں آپ جماعت اسلامی کے کسی ایک آدمی کا نام بتائیں جس نے آج تک, حالانکہ 2 دفعہ جماعت اسلامی پارشلی حکومت میں رہی ہے.
جماعت اسلامی کے پاس اب لیڈرشپ آنی چاہیے.
نہیں,
آپ کا کہنے کا مقصد تو یہی ہے نا,
یہ عوام بتائیں, یہ عوام چنے ہوئے جو بھی ہیں. ضروری نہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر ہی صرف نیک لوگ, باقی نہیں ہے اور بھی. میں نے کرائیٹیریا بتایا آپ کو کہ ایسے لوگ جنہیں ملک میں,
نہیں مطلب جماعت اسلامی کے پاس اب لیڈرشپ آنی چاہیے,
بینکوں کا قرضے نہ کھائے ہوں, کرپشن نہ کی ہو, کبھی با کردار ہوں, ان کے اخلاقی ان کا جو کردار ہے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہو, اور جو پھر اپنے اپنے فیلڈ میں مہارت رکھتے ہوں, جو معاشی معاملات میں مہارت ان کو ہو, جو سائنٹسٹ بھی ہوں, جو ڈاکٹر بھی ہوں, جو انجینئرز بھی ہوں, جو کہ ملکی نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. یہ نہیں کہ خالی وہ نیک آدمی ہوں, لیکن ایک آدمی مثال کے طور پہ آدمی کتنا ہی نیک ہو لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ کیسے ڈائگنوز کر سکتا ہے, کیسے تشخیص کر سکتا ہے, मैं ये सारे सारे कुलीय कायदे हैं, जैसे मैंने आपके सामने किया कि ये क्राइटेरिया
है। बहुत ही कोई इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो आप बात कर रहे हैं, मतलब हम तो कंसीवेबल बिलीवेबल की बात इस वक्त करना चाहते हैं। अगर जमात इस्लामी को आप लेके आते हैं तो जमात इस्लामी आज तक 50 सीटें तो हासिल ना कर सकी।
देखिए
ठीक है, कितों गवर्नमेंट बना लेंगे,
आवाम ने ना चुनाव नहीं मतलब है। आप फिर भुगत भी तो रहे, आप भुगत भी तो रहे हैं ना। आपने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हमें एक ऐसा खिता आता फरमाया जहां हम ला इल्ला की जो है अमलदारी ला सके।
सर अब अफगानिस्तान में ला इल्ला इल्लल्लाह वाले लोग आ ही गए हैं ना।
नहीं
तो क्या हो गया अफगानिस्तान,
कहां ला इल्ला वाले?
तालिबान वाले ला इल्ला इल्लल्लाह वाले ही हैं।
देखिए बात देखिए, आप फिर वहां लेके जा रही हैं, तो उसके लिए फिर अलग से मौजूद रखे, अलग से बात लेंगे। अब पाकिस्तान की बात हो रही है, आप
मैं तो आपका भी ब्लड प्रेशर हाई करूंगी। देखिए सर मैं आपको तो बताऊं, इट्स अ फनेटिज्म। हम ना मजे की बात यह है कि हम हर चीज में रिलीजन को लेके दाखिल हो जाते हैं। चले मैं आपसे एक स्टेटिस्टिक्स पता करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपसे। आपके पास, आप मुफ्ती भी हैं, आपके पास स्टेटिस्टिक्स, बड़े अरसे से आप कॉलम लिख रहे हैं और
आप लड़ाई करना चाहते हैं,
आप मुझे ये बताइएगा कि चले प्रपोर्शन बता दें पाकिस्तान की, क्या प्रपोर्शन है जिसमें लोग कुरान का मानी समझते हैं और इसको मैनुअल ऑफ लाइफ के तौर पे डील करते हैं।
देखिए आपकी बात मैं समझ गया हूँ, जो आप शरा कर रहे हैं ना होने के बराबर है, बहुत कम लोग हैं।
अच्छा फिर सर,
इसका मतलब ये है कि हम फिर कुरान की दावत ही ना दें। दावत तो हम देंगे,
एक मुफ्ती साहब थे जिनकी तस्वीर आ गई थी रमजान के, मुझे नाम तो बताना उन मुफ्ती साहब का, क्या नाम था वो? सर कुरान पाक पढ़ाते हैं, कवि, मुफ्ती कवि, ठीक है। वो बेचारी बलोच थे मर गई, वो तो इंडिया फिल्म बनाने लगे। और जितनी इज्जत मेरी आपकी होनी है ना, ओह टका के इज्जत होनी, आप देखिए वो फिल्म आ लेने दे।
ये बदनसीबी भी है,
मुफ्ती साहब को जेल भी ना हुई। और आपको पता है कि कितनी लोग जो इस्लाम कुरान बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मुफ्ती साहब से कुरान भी पढ़ते हैं।
वो किस जमात के मजहबी नुमाइंदे थे?
मुझे क्या पता किसके होंगे,
किस सियासी जमात के?
सर वो पीटीआई के साथ अब थे, मगर उससे पहले कौन से थे? एक्सक्यूज मी सर, नो, आई स्टॉप यू हियर, नो, आई एक्सक्यूज मी सर, आई स्टॉप यू हियर, आप एब्सोल्युटली रॉन्ग जा रहे हैं। जब मैं कुरान को फॉलो कर रही हूं तो मैं कुरान को फॉलो कर रही हूं, वहां पे तो तीन हरफ भेजती हूं जमातों के ऊपर। मैंने किसी जमात का जिक्र नहीं किया। जब आपसे बात करती हूं ना, आप कुरान को अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैंने मुफ्ती साहब का अगर नाम लिया है तो मैंने कुरान की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से किया। रोजा तो आप छोड़ ही नहीं सकते अगर आपका बिला जवाब है। सर यहाँ पे जमात मत लेके आए, आई एम सो सॉरी, आई रिस्पेक्ट यू, डोंट ब्रिंग जमात। जब कुरान की बात हो रही है और एक मुफ्ती की बात हो रही है जिसके पास मुफ्ती का सर्टिफिकेट है या जो कुछ भी है, तो सर मैं वहां पर कुरान के मैनुअल ऑफ लाइफ,
आपको कुरानी की एक मिसाल दे देता हूँ।
नहीं सर मुझे कुरान की मिसाल नहीं चाहिए, मुझे नहीं कुरान की। मैं आपसे कहती हूँ, मैंने आपको जो एग्जांपल दी है ना कि हमने मैंने ना सवाल किया ना, मैं आपसे ये कहती हूँ मुझे कुरान पाक की, मैंने अगर आपको मुफ्ती साहब का नाम लिया था ना कि जब हम रिलीजियस लोगों पे काउंट ही करते हैं, फिर वो एक मुफ्ती साहब है जिनके स्टूडेंट ने, खबीस आदमी ने वीडियो बना के भेज दी, एक बंदा इस्लामी नहीं बोला, एक बंदा पॉलिटिकल नहीं बोला, किसी एक बंदे ने उसके ऊपर नहीं किया था, बुजुर्ग आदमी। और अगर मैं तो कहती हूं इज्जत वाला होता ना खुदकुशी करके मर जाता। सर मैं आपको एक बात बताऊं,
मैं आपकी फिर तस्दीक कर दूं, आपने कहा एक बंदा भी नहीं बोला, आप अब मेरे कॉल में आपको भेजता हूं, आप पढ़ती भी हैं, फिर भी आप कहती हैं एक आदमी नहीं बोला। सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी को लानत भेजी है तो उस शख्स में भेजी जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि आप कह रही हैं एक आदमी नहीं बोला।
जी सर ठीक है सर, मगर सर अब दिस इज वेरी सैड, मेरे लिए पाकिस्तान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे कहा
आपकी बात बड़ी फिक्र अंगेज है। आपने जो इस तरह दावत दी है कि ये तो उन लोग सब, हम सब उसमें मैं भी शामिल हूँ,
ये आज का एक बड़ा प्यारा कॉलम आया है जिसको
हमें कुरान का उसकी रूह के मुताबिक मुताला करना चाहिए।
एग्जैक्ट,
और आज इस वक्त ہر زبان میں ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ آ چکا ہے، یا بھی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، اور تو اور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا معنی ہی ہم سمجھ جائیں، نماز کا مطلب سمجھ جائیں کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے الفاظ کو چن چن کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس طرح ہم اللہ سے جب گفتگو کرتے ہیں ہمیں پتا تو ہو کہ ہم اللہ سے کیا وعدہ وعید کر رہے ہیں۔ اللہ
سر آپ ہی نے آج مجھے ایک واقعہ سنایا، ہمارا بڑا پیارا پروگرام ریکارڈ ہوا، میں آئی ریسپیکٹ مائی برادر، مگر یس میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ غلط اس غلط نہ تو یہ کہ میں تو خود ذاتی طور پہ ہر بندے کو کہتی ہوں قرآن کو انڈرسٹینڈ کر کے امپلیمنٹ کیا جائے، وہ ہے نا کہ دوسروں کو آپ تب تک کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے جب تک آپ خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، امر بالمعروف نہیں انل منکر، ٹھیک ہے خود کرو تو پھر آگے کی طرف لے کے چلو، بٹ انفارچونیٹلی رشوت بہت زیادہ ہے، عام ہے۔ آج سر یہ جو ایک کالم آیا عبدالرزاق کھٹی صاحب کا، اینڈ اٹ از آج آپ دیکھیں آرمی کے کتنے لوگ اس اسلام آباد پہنچنے کے، جس میں جرنلز بھی ہیں، جس میں بریگیڈیئرز بھی ہیں، اینڈ دس نیوز از ایوری ویئر، اور انہوں نے جو ایک لفظ کہی ہے جس میں ایک لفظ ہے، اور میں ظاہر آپ جیسے سمجھدار انسان کو اسی لیے کال کیا ہے کہ ہم سمجھ کی بات کریں، کہ نواز شریف صاحب گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں، وہ کس سے گارنٹی مانگ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب، یا اپنی جو باقی علاقے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ جو عمران خان کی زبان میں جو کانفیڈنس ہے تو بیہائنڈ دا سین اسٹیبلشمنٹ حلہ شیری دے رہی ہے اس کو۔
دیکھیے اس کا جواب تو کھٹی صاحب ہی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تھیوری انہوں نے ہی سامنے بولا ہے،
انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں مختلف لوگوں سے،
میں کہتا ہوں وہی اس کی بہتر اس کے انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنی آپ کو رائے دینے لگا ہوں اس کے بارے میں۔ اگر نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جائے تو مجھے یہ بتاؤں، میں یہ پوچھنے میں حق رکھتا ہوں کہ کل آج سے چند مہینے پہلے جب آپ جن کو گالیاں دے رہے تھے آج آپ ان سے گارنٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ جن کو آپ نے گالیاں دیں برسر عام جلسوں میں گالیاں دیں اور کیا کچھ نہیں کہا آپ نے، آج جو بھی سیاسی اقتدار سے اترتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ فوج کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، میں کہتا ہوں پھر آپ اسی سے کیوں گارنٹی مانگ رہے ہیں پھر آپ؟
اچھا میرا آخری سوال، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے بہت پیارے بھائی ہیں، میں I'm so sorry اگر مطلب میں آپ کو صرف اتنا کہتی ہوں، اور میں ہر نہیں سر میں ہر قرآن سمجھنے والے سے یہ کہتی ہوں کہ صرف مذاق نہ بنائیں، آپ اگر قرآن پاک کو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ماتھے پہ محراب، آپ ہی نے آج واقعہ بتایا، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی اتنی رشوت لے کے آؤ گے تو میں کام کروں گا، ٹھیک تو سر یہ بھی تو قدر ہے نا، قدر ہے کہ نہیں قدر ہے؟
میں نے بڑے دکھ سے، اچھا پہلے میں ایک بات بتا دوں، آپ میری چھوٹی بہن ہیں، ہاتھ نہ جوڑا کریں، میں نے بہت پہلے آپ کو اپنے ساتھ خون معاف کر رکھے ہوئے
سر، یہ ایئر پہ گیا، میں نے ریڈیو پہ آپ سے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈس ریسپیکٹ فل، ان
فیکٹ ایسا نہ کیا کریں، ہاتھ نہ جوڑا کریں، مجھے بہت شرم آتی ہے اس طرح جواب کرتی ہیں، بات یہ ہے
کہ
آپ کا حق ہے ہر سوال مجھ سے پوچھنا۔
سر پنجاب آج 27 دن سے وداؤٹ اینی گورنمنٹ چل رہا ہے، کیا ترس نہیں آتا اس ملک کے اوپر؟
بہت رونا آتا ہے، ترس نہیں آتا، روتا ہوں،
ظلم تھا کہ میں یہاں پہ آپ اس یہاں پہ آپ یو کین برنگ عمران خان کہ وہ اس نے اپنی ضد، اس کی سب سے بڑی پرابلم تھی وہ ہٹ دھرم آدمی ہے، یعنی بزدار کو ہٹا دیتا تو کیا پرابلم تھی اس کو، ٹھیک، مگر آج ماں باپ یعنی کوئی پرسان حال نہیں ہے پنجاب کا، واٹس گوئنگ آن؟
یہی صدمہ تو یہی ہے کہ ہم ہمیشہ لکیر، بعد میں جب لکیر رہ جاتی ہے اس کو پیٹتے ہیں،
اور سندھ میں جو پانی کے ناکے انہوں نے گورنمنٹ سے، مجھے نہیں پتا کون سی گورنمنٹ کے بیچ میں لگائے، ماجد بھائی جب پانی آ رہا ہوتا ہے نا تو جب اس کے ناکے لگائے تو انہوں نے نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں اللہ والوں کو لے آئے، انہوں نے کیا کیا کہ تقسیم کر دیا، ایک غریبوں کا ناکہ ہے، ایک امیروں کا ناکہ ہے، پانی صرف امیروں کے ناکے میں جاتا ہے، غریبوں کے ناکے کے بند ہی گرے رہتے ہیں، 25 دن سے پانی نہیں ملا ان کی زمینوں کو، اور آپ امیجن کریں اتنی گرمی کے بیچ میں زمینوں کا کیا حال ہوگا، امیر امیر سے امیر بنتا چلا جا رہا ہے۔
لیکن اس میں اللہ والا کو کیا قصور ہے؟ آپ ان کو کیوں 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 الزام دے رہے ہیں؟ اللہ والا نے کون کون سا اس بار ان کا اس حق میں
پاکستان میں کون سا بچہ ہے جو مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہوا؟ کون سا بچہ؟
بات تو دیکھیں نا, آپ جس طرح جب اشارہ کرتی ہیں تو پھر اس طرح
اللہ والے یہ مت, آپ اللہ والے کسی اللہ کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک مسجد میں خطبہ ہو رہا تھا تو مولوی صاحب کہتے کہ جی عید والے دن پلاؤ پکانا چاہیے, سنت ہوتی ہے, کیونکہ مولوی صاحب کا اپنا دل کر رہا تھا. میں نے تو کہیں نہیں آج تک پڑھا. تو سر یہ پلیز, پاکستان کا ہر بچہ, نو پاکستان کا ہر بچہ
سب سے دوری ہے,
پاکستان کا ہر بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, ہر بچہ قرآن بھی پڑھا.
دیکھیے میری بہن, جب ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے فہم کے ساتھ, جس کا آپ بھی تذکرہ کرتے ہیں بار بار, میں بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں, دل سوزی کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں, میں تو قرآن تو دور, قرآن تو بات بات میں آئے گا جو پڑھنا بڑا لازم ہے ہمارے لیے. میں تو نماز کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں, کم سے کم خدا خدا را اس نماز کے جو نماز جو ہم پڑھتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ رہا, تم مجھے تم میں مجھ سے باتیں کر رہے ہو, مجھے دیکھ رہے ہو, میں تمہیں
بہت شکریہ خواب بھائی, سوری سمیع بھائی, اب ہماری انٹرنیشنل نیوز کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے, تو اللہ والوں کو لے کے آئے. اس کا مطلب ہے اللہ والوں میں بھی تو ہم ڈیوائڈیڈ ہیں. وی آر شیاز, وی آر سنیز, وی آر ڈاکٹر اسرار الحق, وی آر ڈاکٹر وہ کیا ہیں ہمارے ساتھ آئے بھی تھے, شیخ محمد, ٹھیک, وہ کہتے ہیں میں تو حدیث پہ بلیو نہیں کرتا, نو حدیث, اوکے, اور ہمارے غامدی صاحب, تو پھر کون سا والا اللہ والا آئے؟
دیکھیے پہلے تو آپ قرآن پڑھ لیں, آپ قرآن پڑھ لیں, آپ
قرآن بھی صاحب قرآن پاک کی بہت پیاری تفسیر کرتے ہیں,
اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو فہم دے دے گا.
سر غامدی صاحب بھی بڑی اچھی تعریف کرتے ہیں,
غامدی صاحب ہو یا دوسرے لوگ ہوں, مطلب ہے یہ اپنے اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں, میں سب کا قدردان ہوں, سب میری سمجھتا نہیں ہے, لیکن جائز احترام کے ساتھ اختلاف رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ اس بنا پہ اختلاف کریں کہ میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں.
مجھے آپ آخری سوال مجھے یہ بتائیں, آپ سیاست میں بڑے سیاسی بیان دیتے ہیں, آپ الیکشن میں کیوں نہیں آ جاتے؟ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر ایک سیاستدان ہے ضرور.
نہیں کبھی نہیں, اللہ اللہ فرمائے, یہ سب سے بڑا آخر میں سب سے بڑا الزام لگا کے پروگرام ختم نہ کریں.
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشن آپ ہی لڑ لیں؟
میں اس نظام کے تحت
نہیں سر, آپ اپنی پارٹی بنا لیں. مجھے پاکستان میں ایک سنگر ہے, کیا نام ہے, جواد احمد, اس نے بھی پارٹی بنا لی, آپ بھی بنا لیں.
اس نظام کے تحت مجھے اس نے دعوت دی, میں اس نظام کے تحت بالکل الیکشن لڑنے کے حق میں نہیں ہوں. میں جو میرے رب اور میرے رسول نے آ کے جو نظام بتایا ہے اس نظام کو میں مانتا ہوں, اور اس نظام سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ ایک پروگرام رکھ لیں, اس پروگرام میں بات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ.
آج تو لڑ گئے عارف اور بھائی سمیع اللہ, سمیع اللہ ملک صاحب, ڈاکٹر ڈاکٹر,
آپ کو سات خون معاف ہے, میرے کو ایسی کوئی بات نہیں,
سات خون معاف ہے,
پروفیشنلی ہی از این انجینئر. میں تھا نا سمیع بھائی کو میں نے الیکشن لڑوا دینا ہے, ہی از اے بگ ٹائم پالیٹیشین,
پہلے اپنے سے تو لڑوا لیں.
چند
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں آپ لوگوں کی بہت ہی اچھی گفتگو,
سمیع بھائی یہ چاہتے ہیں کہ
آپ گفتگو نہ گئے, آپ کہیں کہ آپ دونوں کی نوک جھونک سن رہا تھا,
نوک جھونک سن رہا تھا, مگر نیکسٹ ٹائم نا آپ ذرا سمیع بھائی کو, میں تو اس چیز کا عادی ہو چکا ہوں نا, مگر آپ ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیا کریں, وہ اپنا جو آپ سوال کریں اس کا پورا جواب دیا کریں. وہ ان سے
سمیع بھائی بہت بڑے سیاستدان ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ کو پتا ہے محید پیرزادہ بڑی ٹھیک ٹھاک فنڈنگ لی, بڑا پروگرام کیے, ایسے 360 پہ چینج ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ان کی غلطیاں تھی, کل میں ان کا ایک انٹرویو دے, آئی سینڈ یو. تو چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے,
درست ہے, چڑھتے سورج کو, ہماری یہی ہماری بدنصیبی ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ رہے,
خوش رہے, سلامت رہے بہن, ہنستی رہے, مسکراتی رہے, اور اس طرح پاکستان کا درد جو ہے بانٹتی رہے. پتا نہیں آپ کا یہ درد کتنے لوگوں کا بھلا کر دے گا.
bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے, چند ایک اسپانسرز, اینڈ ویل گو ٹو دا انٹرنیشنل نیوز ناؤ, اسٹے ٹیونڈ پلیز.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM, یونگسٹاؤن ٹورانٹو. ट्रैकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब, लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
ओ माया मेहंदी रोका या ब्याह दा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वालिया दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 to 700 तक दी कैपेसिटी, ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनियंटली लोकेटेड इन बॉन। हुणे कॉल करो अते अपनिया पार्टियां बुक कराओ, 416-433-9191, 416-433-9191।
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो, 416-655-2000। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो, 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
ट्रकिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने का शानदार मौका मेज कंसल्टेंसी ऑफर करते हैं। ट्रक डिस्पैचर एंड फ्रेट ब्रोकर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज, इस ट्रेनिंग कोर्स के जरिए आप बन सकते हैं ट्रक डिस्पैचर, फ्रेट ब्रोकर या शुरू करें अपनी ट्रकिंग कंपनी। अगर आप ट्रकिंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो हम आपको कंपनी को सेटल करना, परमिट्स और तमाम दूसरी चीजों का बंदोबस्त करने में मदद करते हैं। आज ही कॉन्टैक्ट करें मेज कंसल्टेंसी, 9058262919।
शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं पूरी दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में, जून 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबर हार आफ्ताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800, 416-526-6800।
हेलो, मैं हरदीप गरेवाल, थोड़ा ब्रैम्पटन ईस्ट तो पीसी पार्टी दा एमपीपी कैंडिडेट। 4 साल पहला तुसी प्रीमियर डग फोर्ड अते पीसी पार्टी नू मौका दिता, रिजल्ट थोड़े सामने है। ब्रैम्पटन दे लई न्यू सेकंड हॉस्पिटल, एक नमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, सीनियर दे लई नमे लॉन्ग टर्म केयर बेड्स, बिल्डिंग हाईवे 413। 2 जून नू अपनी कीमती वोट पा के मेनू हरदीप गरेवाल नू कामयाब करो, ते आओ अपा रल के ब्रैम्पटन नू अगे वधाइए।
ऑथराइज्ड बाय द हरदीप गरेवाल कैंपेन।
हर किसी टीम फॉर एंटरटेनमेंट एंड ट्रांस 99 लॉजिस्टिक्स प्रेजेंट अरिजीत सिंह लाइव इन कॉन्सर्ट सैटरडे जून 11th एट द फर्स्ट ऑन्टेरियो सेंटर हैमिल्टन।
एक बार सही एक रात की कर ले तू यारी,
इन एसोसिएशन विद ट्रांस एक्सपर्ट ऑटोबान, रोडलिंक, RPD24, Magnus Furniture and G Media Group. For tickets, visit Ticketmaster.ca or call 905-793-1234. Team 4 Entertainment presents Arijit Singh Live in Concert.
ऑन्टेरियो में हर साल हैंडगन से होने वाले कत्ल की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इस दौरान फूड कंजर्वेटिव्स ने हैंडगन्स पे पाबंदी लगाने की सारी कोशिशों में रुकावटें डाली हैं, और ऑन्टेरियो लिबरल सरकार हैंडगन्स बेचने, अपने पास रखने, उनकी ट्रांसपोर्ट और उनकी स्टोरेज पे पाबंदी लगाएगी। ये हमारा मंसूबा है, इंतखाब आपका है, ज्यादा हैंडगन्स या महफूज कम्युनिटीज।
ऑथराइज्ड बाय द CFO ऑफ द ऑन्टेरियो लिबरल पार्टी।
Mesmerize Opticals, sunglasses, eyeglasses and contact lenses.
doctor on site. Get your eyesight checked. Mesmerize Optical.
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा $228 से $1000 महीना कैसे बचा सकते हैं कॉल हैरिसन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
क्या बात है बेटे बड़ी आवाज नजर आ रही है
अबू जान खुदा का वास्ते इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे हर मोड़ पे रुक जाती है
और बच्चे परेशान क्यों होती हो लाओ गाड़ी की चाबी दो अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर पर गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम इंजन ट्यूनअप चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस ब्रेक्स नए और पुराने टायर साफ ऑयल फिल्टर मुफ्त में चेंज स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको टेलीफोन 416-747-6800
वेलकम बैक अगेन एंड साहब 5:36 और 14 सेकेंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और एज यूजुअल अब वक्त आया है खबरों का और मैं आपके लिए सारी खबरें पेश करूंगा मैं ये देख रहे हैं आपके पास कितनी सारी खबरें हैं मैं सारी खबरें आपके लिए एंड आई डोंट नीड नो इंटरफेरेंस एंड आई एम सेइंग द न्यूज नो इंटरफेरेंस एब्सोल्युटली नॉट उसके लिए हमने वर्ड इजाद किया है एब्सोल्युटली नॉट खैर चलिए साहब खबरों की तरफ चलते हैं और पाकिस्तान में क्या हो रहा है दुनिया भर में क्या हो रहा है अभी आपने सभी लम्बा साहब को सुना और चलिए इनको ले आते हैं आपको आप अगर आप कह रहे हैं तो मैं ले आ रहा हूँ वरना तो मेरा मूड नहीं था शाजिया मलिक जी अस्सलाम वालेकुम आप कैसी हैं आप
ओहो वालेकुम सलाम अजय भाई मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं खैरियत से
खैर है जी
खैर है
खैर
तो ठीक है आपको रात को नींद ठीक आ रही है
ओह ऐसे बच्चों की तरह
वो तो मेरी इस उम्र में बंदा बच्चा ही हो जाता है यानी मेरा कहने का मतलब है यू आर स्टिल स्वीट 16 ना
हाँ मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ 27 से मैं
है
27
27
हाँ जी
नहीं मैं ये बड़े कब हुए कब अभी पिछले साल तक तो 16 थे स्वीट 16 पे थे
मैं
17 का तो अमीर है
मैं बहुत जल्दी बढ़ रहा हूँ
अच्छा ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं
हाँ मैं बहुत जल्दी बढ़ रहा हूँ
हाँ ये तब्दीलियां जो आ रही है ना ये तब्दीली आ गई है
तब्दीली आ गई
हाँ हाँ पाकिस्तान में भी अभी थोड़े दिन पहले जो लोटे 70 करोड़ के थे वापस आ गए पुरानी कीमत पे 70 रुपीज ओनली नाउ
तो ये 70 को नहीं छोड़ा देखें
नहीं नहीं 70 को से चिपके हुए हैं तो आपने भी 16 नहीं छोड़ना मजद भाई
अच्छा अच्छा
हाँ आपने बिल्कुल देखें हमने ये सारों की जो एजेस है ना ये हमने वो डाली हुई है डब्बों के अंदर
अच्छा,
उस डब्बे से आउट ऑफ द बॉक्स तो थिंकिंग करनी नहीं है ना आपने बिल्कुल यू आर 16 डॉक्टर आमिर इज 17 जीशान इज 18 अरफा बाजी 16 आई एम 26
ओ यू आर 26
यस
कुछ कहने वाला था यूएस
मैं तो ये फैमिली प्रोग्राम है क्या कहने वाले थे आप सोचिए जरा पहले नहीं कहना आपने बिल्कुल नहीं कहना
मैंने बिल्कुल नहीं कहा
जरा अच्छे बच्चे बने आप
मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं कहता हूँ
16 का मतलब ये नहीं है कि अब आप हर कुछ बात कर सकते हैं यहाँ पे
माफ है ना
हाँ अच्छा ओ अच्छा
16 को तो माफ है
अच्छा
अच्छा यार कह रहा है कहने दो
कहने दो अच्छा 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 ये आप इस चीज का एडवांटेज लेते हैं
कितना के बाबा जी ने कहा कि हमेशा शादी अपने से
लंबी औरत से करो
नहीं नहीं बड़ी उम्र की
अच्छा बड़ी उम्र की औरत से
जब वो डांटे भी ना
तो लगता है मां डांट रही है
आगे लगा बड़े कोई बड़ी डांट रही है सुन लो
लेकिन एक जो सियाणा था ना वो आपसे भी ज्यादा सियाणा था उसने कहा हमेशा अपने से लंबी औरत से शादी करो क्यों क्योंकि वैसे तो आपने जलील ही उससे होना है लेकिन एटलीस्ट बात तो आंख उठा के करोगे और वो हमेशा आपसे आंख झुपका के बात करेगी. देखे मुझे सही कैसे कैसे ब्रेन्स हैं पाकिस्तान में, क्या क्या सोचते हैं है? बड़ी स्मार्ट कॉम है, स्मार्ट.
तो रोमेरो साहब जो है वो नीचे आकर के बात करते
उनको तो करना ही पड़ेगा.
आप ऐसा करें आजकल वहां पर, आजकल यहाँ पर हील्स आ गई हैं
हाँ।
जो डेढ़ डेढ़ फुट की हैं.
अच्छा
हाँ।
वो तो नीचे पर सोटी लगा लेना बंदा.
डेढ़ डेढ़ फुट की लंबी हीलें हैं.
अच्छा अच्छा अच्छा
तो बस आप उस पर चला करें
हाँ, हाँ, हाँ।
और जब बात करना हो ना
हाँ।
तो एक स्टूल रख लें वहां पर.
अच्छा बिल्कुल हाँ जी ठीक
है. स्टूल पे खड़े हो जाएं आप.
हाँ बिल्कुल. या कुर्सी पे खड़े हो जाएं.
हाँ कुर्सी पे खड़े हो जाएं.
हाँ ठीक है बिल्कुल सही है.
उन्होंने तो ऊपर ही देखना होगा ना.
हाँ हाँ
हाँ क्या आइडिया दिया आपको.
मुझे तो जब मैं दुबई जा रही थी तब ये आइडिया आपने क्यों नहीं दिया. देखिए मैं कुर्सी अपना स्टूल अपने कपड़े इधर छोड़ के जाती, स्कूल स्टूल साथ लेके जाती मैं.
हाँ
ये जो है ना आपने काम खराब कराया मेरे से. ओहो
चलो आइंदा फिर इंशाल्लाह कभी ना कभी जिंदगी फिर पैसे जमा करेंगे फिर दुबई जाएंगे.
बिल्कुल बिल्कुल आजकल हम पैसे फिर से जमा कर रहे हैं
है ना
दुबई जाने के लिए. यस बिल्कुल ठीक है महेश भाई. और यस दुबई हमने जाना है और हमने जाके इस दफा कोई ना कोई रोमेरो जो है पकड़ के लाना है
हाँ।
तो यानी कि आप देखें ना कमरे में तस्वीरें लगाने से तो ये काम नहीं चलेगा ना फिर.
हाँ
तो ये फिर अब जो है कुछ इस पे कार्रवाई डालनी पड़ेगी.
आप मैं कहता हूँ कि आप फौरी तौर पर कार्रवाई करें.
हाँ हाँ लेकिन आज सुबह तो आप मुझे कह रहे थे कि मैं काम कर रहा हूँ इस मसले पे.
वो अंदरूनी तौर पर चल रहा है ना मामला.
अच्छा अच्छा अंदरूनी तौर पे
मतलब एक थोड़ी कई लोग काम कर रहे हैं.
अच्छा
हमारी पूरी टीम काम कर रही है.
अच्छा टीम काम कर रही है.
पूरी टीम के मॉर्गेजेस देने हैं आपने.
एक मिलियन मेरा, एक मिलियन डॉक्टर आमिर का और जो है एक मिलियन जीशान का, एक मिलियन जो है वो, एक मिलियन जो है वो मिनू आपा का. तो पता नहीं अब जो है वो सरवत उनके कितने हैं. आप और आरफा बाजी तो अमीर लोग हैं ना.
अच्छा अच्छा
तो आपको चाहिए तो ये चार मिलियन तो चाहिए ही चाहिए हैं मुझे.
अच्छा 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 बस ठीक है.
हाँ,
ठीक है
चार मिलियन.
हाँ
तो बस ये अब जो है काम इस पे शुरू करें प्लीज आप.
फौरी तौर पे पूरी टीम काम कर रही है.
दिन रात. ओके ओके चलो ठीक है माजिद भाई. अल्लाह आपको खुश रखे. देखें आप अल्लाह की मखलूक को खुश रखे. हमारी दिल से दुआएं निकलेंगी अल्लाह आपको खुश रखेगा. ठीक है
इंशाल्लाह.
अच्छा जी. अच्छा जनाब ये जो है ना मस्करियां बहुत हो गई हैं माजिद भाई के साथ. कोई काम भी कर लिया करो जी. है जी तुसी भी काम कर लिया करो. तुसी की बैठ जाते हो चाह लेके रोज समोसे पकोड़े लेके. कोई कम शम नहीं है. रोज आके बैठ जाते हैं इधर.
हाँ सुनाओ जी सुनाओ.
हाँ जी कहानियां सुनाओ.
कहानियां
जी आपके पास कहानियां बहुत हैं. साढ़े को भी बढ़िया कहानियां होती हैं ना. हम भी आपके लिए सुबह शाम कहानियां जमा करते रहते हैं. तो ये चक्कर है. अच्छा जी जाएं आप हमारी प्यारी वेबसाइट पे जाएं. देखें कितनी प्यारी आज लग रही है जी. तो इसमें बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं. ये तो आपको देख के दिल कर रहा होगा कि जब भी मार लें आप सरों के साथ. हैं जी इतनी प्यारी तस्वीरें. अच्छा जी ये आप देखें उर्दू की बड़े खबरें आप देख सकते हैं. फिर अब ब्रेकिंग न्यूज़ हैं. फिर हमारी लोकल खबरें हैं. लोकल खबरों के नीचे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज मिलती हैं. इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज में हेल्थ मेडिसिन लाइफ स्टाइल एंटरटेनमेंट की स्टोरियां आती हैं. ठीक है जी. फिर आप नीचे आते हैं तो आपको यूथ जोन में जब भी हमारे पास आती हैं खबरें हम वो डालते हैं. फिर नीचे आप आते जाओ. ये माजिद भाई की जो फेवरेट है ना ये तो मैं बहुत ही डालती हूँ इसकी कहानियां. ये कनेडा की खबरों में आप देख सकते हैं माजिद भाई की फेवरेट. बहुत ही फेवरेट है माजिद भाई की. और फिर इस स्पोर्ट की आप खबरें देख सकते हैं. और राइट साइड पे आप देख सकते हैं जी हमारे स्पॉन्सर. तो ये स्पॉन्सर जो है ये बड़े ही प्यारे हैं. ये भी बड़े अच्छे हैं. तो आप भी इनके साथ अच्छे बन के रहें. हैं जी आप भी सलूक रखें ताकि ये हमारे साथ सलूक रखें. है ना माजिद भाई.
हो गया जी काम.
हाँ हो गया काम. आया हाँ। जी चलो चलो ठीक है जी. हूँ कहानी हो गई सारी खत्म. हूँ आ जाते हैं अपने स्यापे के ऊपर.
पहले स्यापे
पढ़ लो. हाँ ये स्यापे अब पढ़ने लगे हैं आज. आज फिर बहुत सारी हमारे पास इरपोटे हैं.
हाँ।
तो ये जो इरपोटे हैं इनके ऊपर आज हम बात करेंगे. और कुछ काम हो रहा है इस बात पे कि बात की जाए कि व्हाट इज फैशिज्म. तो फैशिज्म के ऊपर भी थोड़ी बात होगी कभी किसी जमाने में. अभी कहानी जमा हो रही है.
अच्छा अच्छा अच्छा
ठीक है जी.
आज नहीं होगी.
हाँ आज जरा उसका थोड़ा सा हम एक फीलर छोड़ के जाएंगे आपके पास.
अच्छी बात.
तो सोचते रहे जैसे मैंने सारी रात सोई नहीं हूँ ना. मैं मुझे नींद आई तो मैं चाहती हूँ आपकी भी नींदें उड़ जाए ये स्टोरियां सुन के.
वो एक आदमी था ना वो किराएदार था.
अच्छा
उसके पास पैसा नहीं था. एक महीना हुआ दो महीने हुए तीन महीने हुए पांच महीने छह महीने तक उसने किराया नहीं दिया.
अच्छा
मालिक मकान को बड़ा गुस्सा आता था. रोजाना वो आ जाए उसके पास कि भाई आप. अच्छा यार किराएदार बड़ा शरीफ आदमी था.
आपकी तरह का.
मेरी तरह का.
अच्छा
बड़ा शरीफ आदमी था मगर क्या करे पैसे नहीं है उसके पास.
ओ, हो, हो.
तो वो ये नहीं कि वो नहीं देना चाह रहा था. देना चाह रहा था मगर उसके पास पैसे ही नहीं है.
उसको फीमेल रोमेरो नहीं मिल रही.
वो एक दिन रात को ना वो एक दिन रात को था वो जागा हुआ था.
अच्छा,
उसको नींद ना आए.
नींद ना आए,
करवटें बदल बदल के, करवटें बदल बदल के वो जो है वो नींद ना आए उसको.
करवटें बदलते रहे सारी रात हम.
हाँ
जी, आपकी कसम.
अब आप आपके किराया वो मालिक मकान है, फिर आएगा वो आके दरवाजा खटखटाएगा जोर जोर से और फिर कहेगा कि किराया दो मेरा. तो कहने का कि अच्छा तो ऐसा है कि मैं जाता हूँ. चला गया मालिक मकान के पास, उसके घर में जाके खूब जोर से ये दिस इज 3 o'clock इन द मॉर्निंग.
ओह,
पक्की नींद से मालिक मकान सो रहा था.
ओ, हो,
उसको जोर जोर से दरवाजा खटाया, बड़ी मुश्किल से उठ के आया. हाँ भाई क्या बात है. वो समझा कि इतनी रात को आया तो उस तक किराया लेके आया हो. तो कहने लगा कि सर मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता हूँ. कहने लगे जी. कहने लगे कि मेरे पास किराया नहीं है, मैं आपको किराया दे नहीं सकता. तो कहने लगे तुम इसलिए मेरे पास आया हो इतनी रात को 3 बजे, सुबह कह सकते. कहने लगा नहीं सर, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी. मैंने कहा मैं अकेला क्यों जागू, आप भी जागो. अब आप रात भर सोचते रहो उसके मुताबिक, मैं आपको किराया नहीं दे रहा, मेरे पास किराया है नहीं.
मजिद भाई ये इसको भी फैशिज्म कहते हैं.
मैंने एक फीलर छोड़ा है ना.
अच्छा फीलर छोड़ा है. ओके अच्छा जी, अच्छा चलो ठीक है. मतलब आप जो है ना बहुत डिस्ट्रैक्ट बंदे
exactly.
हैं. देखिए हाँ. ये इधर इतना सीरियस बिजनेस हम
कितना अच्छा किरायेदार का बात बताई मैंने.
हाँ
आपको. इतना अच्छा फीलर तो आपके पास भी नहीं था.
नहीं नहीं नहीं, ये मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हो गया.
देख लिए बस.
हाँ, बस बस अब मेरे से सही.
मेरे साथ रहेंगे वैसे होगा.
हाँ बिल्कुल मजिद, मैं कितनी वाइज हो गई हूँ वैसे भी आपके साथ रह रहे हैं ना.
मैं कह रहा हूँ
लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया.
मैं महसूस कर रहा हूँ.
अच्छा जी, अच्छा जनाब. तो ये जी हम आपको अब कहानियां सुनानी शुरू करते हैं. तो आपको तो पता ही है कनाडा बहुत अमीर मुल्क है. बेशक लोगों के पास खाने के लिए इधर पैसे नहीं है, लेकिन कनाडा बहुत अमीर मुल्क है जी. तो अभी हमने 90,000 लाने हैं यूक्रेनियंस. उससे पहले हम लेकर लाए थे अफगान्स. अफगान्स के साथ भी हमें तो उनके साथ तो
उससे पहले नॉट फॉरगेट सीरियंस.
नहीं नहीं, अफगान्स के साथ तो पहले भी कहानी अफगान्स की नहीं खत्म हुई. इतना प्यार था कि उनके कुत्ते बिल्ले भी हम लेकर आए थे. हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं कैनेडियंस ना. और उससे पहले हम सीरियंस लेकर आए थे.
हाँ जी,
है नहीं.
हाँ
तो बहुत हम नेक लोग हैं. बेशक हमारे लोगों को खाना मिले ना मिले, दुनिया सारी को हमने खिलाना है.
सही,
ठीक है जी. अच्छा जी, आज जी 20,000 मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है जी, ये हम फिर से दे रहे हैं यूक्रेन भाइयों, यूक्रेनियन भाइयों को.
अच्छा,
प्यार बहुत है ना हमारा. वो भी गोरे हैं, हम भी गोरे हैं, उनकी भी नीली आंखें हैं, हमारी भी नीली आंखें हैं.
अच्छा
है जी?
अच्छा,
तो इसलिए भाई भाई यू नो ब्रो टू ब्रो.
अच्छा,
हाँ ऐसे. तो बहुत हमारा प्यार है. और इसकी जो कॉस्ट है, ये जो सारा इम्यूनिशन हम दे रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट है $98 million.
ओ
ठीक है जी, ओनली हमें कितना चाहिए, 1 million. इसके अंदर है जी ये अनीता आनंद जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर हैं जी, उन्होंने ये अनाउंस किया. उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है यूक्रेन के ऊपर है जी. तो हमको ये $98 million की जो है सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी और ये हमको उनको इक्विपमेंट अब देना जो पड़ेगा. इसके अंदर जी M777 हाइट्जर्स होंगी. इसके अलावा जी इसके अंदर हम उनको भेजेंगे चार्ज बैग्स, फ्यूजेस, 155 mm कैलिबर की चीजें. उन्होंने कहा जी कि ये जिस तरह रशिया जो है ये बढ़ाता जा रहा है अपनी एग्रेशन, तो हमारे भाई जो है वहां पे अकेले ना रह जाएं, उनके पास लड़ने के लिए चीजें ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो हमने उनको और ज्यादा चीजें भेजनी. हमने ऑलरेडी उनको एड भी दी है क्योंकि हमारे पास पैसा तो बहुत है. तो हमने पैसे भी दिए थे उनको और अब हम इनको और ज्यादा इक्विपमेंट भेज रहे हैं. आज ये जो थी बीसी के अंदर थी विक्टोरिया में, तो वहां पर ये बात कर रही थी लोगों से. तो उन्होंने कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ना घबराना, यूक्रेन के पीछे हम खड़े हुए हैं. हाँ ये देखो जरा, और चीजें हम उनको भेज रहे हैं. और इसके अलावा और भी एड चाहिए होगी तो और भी जो है वो टैक्स पेयर्स का पेट काट के इनको पैसे भेजेंगे. को खाने वास्ते है कि नहीं है, असि इन्हों जरूर किन्ना की हेल्प करनी है. बिकॉज वी आर वेरी गुड पीपल, राइट. समझा करो मजिद भाई इन बातों को.
और आज उसकी भी रिपोर्ट आपके पास होगी ना कि एंगस
जी, एंगस रीड की भी अभी हम कहानी सुनाएंगे.
हाफ ऑफ कैनेडियंस वेरी डिफिकल्ट और डिफिकल्ट टू फीड देयर फैमिलीज.
लेकिन देखें जी, हमारा तो प्यार जो है वो अफगान्स के साथ है, सीरियंस के साथ है, यूक्रेनियंस के साथ है. जो यहाँ पे रह रहे हैं वो मरते हैं तो मरे, बेशक कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है. हम कैनेडियन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. हमने दुनिया का ख्याल करना है, अपने लोगों का नहीं ख्याल करना हमने.
ठीक हो गया,
ठीक है जी. हाँ जी, तो आप समझा करें, आप बड़े हो जाएं, अब आप 16 से ऊपर चले जाएं अब आप थोड़े से, ठीक है. अच्छा जी, हमारे लीडर हजरात आपको पता ही है, माइक श्नाइडर जो है वो अभी भी जो ग्रीन पार्टी के लीडर हैं, कोविड के प्रोटोकॉल्स जो है अभी भी फॉलो कर रहे हैं. आपको पता ही, हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था, इनको और एंड्रिया हॉर्वेथ जो थी, इनको हो गया था कुछ कोविड के असरात. तो एंड्रिया हॉर्वेथ तो आज से अब निकलने की इनकी कुछ खबरें आ रही थी, लेकिन जो है माइक श्नाइडर अभी भी उसके अंडर हैं. अच्छा, इन्होंने क्या काम किया ना, ये अब इन्होंने क्योंकि खुद नहीं निकल रहे थे, तो इनके जो कुछ दूसरे जो थे ग्रीन पार्टी के लीडर्स, जैसे कि पीआई में पीटर बिवन थे बेकर, वो और पेरी साउंड मस्कोका के अंदर जो और लोग हैं वो निकले हुए थे, मैट रिचर जो है वो निकले हुए थे, तो वो कह रहे हैं जी कि हम इधर इन दूसरे इलाकों में इनकी कमी जो है पूरा करने के लिए हम फिर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम फिर से कुछ और ज्यादा सीटें इस दफा जीतना चाहते हैं ऑन्टेरियो के अंदर। तो अगर लीडर नहीं है तो लोग दूसरे जो हैं दूसरे वो नजर आने चाहिए। तो आपको खासतौर पर पता है कि ये जो पेरी साउंड मस्कोका का एरिया है ये बहुत अरसे से पीसी के पास ही है, और यहां पे पीसी के जो एमपीपी नॉर्म मिलर हैं वो उन्होंने लेकिन कहा था कि मैं रन नहीं कर रहा हूं, तो अब ये इधर इन्होंने अपनी जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी है जो है वो, यानी कि फुर्तियां ज्यादा इनकी हो गई हैं ग्रीन पार्टी की। इसके अलावा जी जो पीसी पार्टी है उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया है लिबरल गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा जी कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं। डकफोर्ड साहब आज मुख्तलिफ जगहों पर आज देखेंगे, डकफोर्ड साहब ने कहा जी कि जो कुछ हम कर सकते हैं, हाईवेज ला सकते हैं, स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो हम काम कर सकते हैं वो और कोई भी बंदा नहीं कर सकता है। तो उस सिलसिले में इन्होंने कहा जी कि हम आपके लिए हाईवेज लाएंगे, हेल्थ केयर देंगे आपको, और अभी हमने वो जो गाड़ियों के ऊपर आपको पैसे वापस भेजे हैं नंबर प्लेट्स पे, तो ये सारे काम जो है हम कर रहे हैं इन्होंने जो है। और इसके अलावा कहा है कि बाकी के जो लोग हैं वो डिलीवर नहीं करेंगे, सिर्फ पीसी जो है वो, यानी कि जो ऑन्टेरियो की ये टोरी पार्टी है, ये आपके सारे वादे पूरे कर सकती है। अच्छा, अब ग्रीन पार्टी की तरह चूंकि एंड्रिया हॉर्वर्थ जो है वो भी ठीक नहीं थी एनडीपी की लीडर, तो जगमीत सिंह साहब जो हैं उन्होंने कुछ जगहों पे विजिट्स किए थे, और जगमीत सिंह साहब गए किंगस्टन और एजैक्स और स्कारब्रो रूश पार्क के एरिया में इनकी एब्सेंस में, क्योंकि ये जो है अब आज निकली हैं, कल वो जो थे वो कुछ जगहों पे देखेंगे, ताकि ये ना होए कि बिल्कुल ही लोग जो है वो गायब रहें और वो नजर आनी चाहिए, यानी कि पार्टी का कोई भी हेड जो है वो जरूर नजर आना चाहिए। हालांकि ये फेडरल लेवल के लीडर हैं लेकिन इन्होंने कहा कि उनकी कमी जो है हम पूरी कर सकते हैं, तो ये इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकातें की और बातचीत की। और एंड्रिया हॉर्वर्थ चूंकि अभी भी 5 डे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रही थी, तो इसलिए तो जगमीत सिंह साहब ने फिर से एक दफा कहा कि एनडीपी जो है ये आपके लिए हेल्थ केयर की फैसिलिटीज लाएगी, और हम वाहिद लोग हैं जो कि बिलीव करते हैं कि स्कूल्स हों, नर्सेज हायर की जाएं, डॉक्टर्स हायर किए जाएं, तो ये सारी बातें जो है उन्होंने की है। इसके अलावा जी फोर्ड साहब जो है उन्होंने भी आज डिफरेंट इलाकों को जो विजिट किया था तो वहां पर और भी वादे किए, डेल्डुका साहब ने भी किए। डेल्डुका साहब ने कहा कि ये सब कुछ सही नहीं बोल रहे हैं, पीसी पार्टी जो है ये ऐसे ही जो है प्रोमिस कर रही है, ये डूएबल नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, तो जो हम लेकर आ रहे हैं वो सारा हमारा जो है कॉस्ट हमने किया हुआ है एक एक चीज का, तो हम प्रॉपर चीजें जो है वो लोगों को दे सकते हैं। और उन्होंने बड़ा एतराज किया फोर्ड साहब पे कि इतना बड़ा तूफान आया एक दिन पहले तो वो तो कम्युनिटी में देखे ही नहीं जा रहे, तो आज उसका जवाब देते हुए फिर जो फोर्ड साहब थे वो अब कुछ इलाकों में देखे गए, और उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम जो ये डैमेजेस आए हैं स्टॉर्म की वजह से ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं, तो हम भी जो है वो कर रहे हैं, तो अक्सब्रिज में ये देखेंगे स्टॉर्म के डैमेजेस को असेस करते हुए फोर्ड साहब। अच्छा जनाब, 9 दिन अब रह गए हैं कैंपेन के, सिर्फ टोटल 9 दिन रह गए हैं, तो पोल्स क्या कह रहे हैं? पोल्स कह रहे हैं जी कि पीसी पार्टी जो है अभी भी स्टेडी है और लीड में है, और एंड्रिया हॉर्वर्थ के पास कुछ वोट्स इन्होंने गेन किए हैं, और इसी तरह सिमिलरली जो लिबरल पार्टी है उसने भी कुछ वोट्स गेन किए हैं, ग्रीन पार्टी अपनी जगह पे ही है।
अच्छा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोल्स डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुना रहे हैं।
हाँ हाँ हाँ, कुछ एक तो पोल इतना फनी मुझे लग रहा था, मतलब फनी तो नहीं, उनका अपना वो एक तरीका कहा है, वो कह रहे थे कि लिबरल्स आगे चल रहे हैं।
हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, डिफरेंट डिफरेंट पोल्स जो है
डिफरेंट
चीजें कह रहे हैं, तो बॉटम लाइन द बेस्ट पोल इज यू गो
इलेक्शन डे इटसेल्फ,
यू गो एंड वोट, दैट्स द पोल।
और जैसे कि आप कल भी कह रहे थे माजिद भाई कि एडवांस में कर लें, जैसे हमने भी वीकेंड पे कर दिया था पोलिंग, तो आप एडवांस पोलिंग कर लें और धिक्का शिक्का उस दिन पड़ेगा, फिर आप कहेंगे जी कि ओहो हम जो है इसलिए लेट हो गए हैं ऑफिस में, इसलिए हम नहीं आ रहे, हमें 2 घंटे की छुट्टी दे दो। तो ये सब चीजों को खत्म करने के लिए बेस्ट यही है कि सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन होते हैं, आप इसमें जाकर एडवांस पोलिंग कर लें, एडवांस पोलिंग कर लें, खाली पड़े हुए हैं इस वक्त सारे, कोई बंदे नहीं है उधर, 2 मिनट्स इन एंड आउट, एग्जैक्टली 2 मिनट्स इन एंड आउट आपका जो है वो है। अच्छा जी, तो ये जो सारे हैं ये इसमें, तो बहरहाल मोस्ट ऑफ द पोल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि डकफोर्ड साहब जो हैं वो स्टडी हैं अपनी जगह पे, और दे माइट, अच्छा लोगों का बहुत सारों का कहना है कि हो सकता है बहुत स्वीपिंग इनको मेजोरिटी ना मिले, थिन मेजोरिटी मिले, लेकिन फिर भी मतलब आप जीतते तो एक रन से भी है ना, जीतते तो आप एक, तो एक सीट से भी जो है अगर जीत है तो वो जीत ही है, तो बहरहाल ये जो है चीज,
एनी पार्टी नीड 63,
हाँ जी बिल्कुल, तो अगर तो आपके पास 65 है तो भी, अगर एग्जैक्ट 63 है तो भी, 64 है तो बस मेजोरिटी मेजोरिटी ही है.
एग्जैक्टली
ठीक है ना. तो ये अब बहुत सारे जुमले हम देखने को मिलते हैं जी, थिन मेजोरिटी आएगी. चलो थिन ही है तो सही ना भाई. तो अब देखेंगे कि बहरहाल इलेक्शन डे पे क्या होगा. अच्छा जी, ये जो आया था स्टॉर्म आया था वीकेंड के ऊपर, उसकी वजह से डरहम के रीजन में और टोरंटो के अंदर बहुत सारे स्कूल्स जो थे वो बंद थे आज भी और कल खुलेंगे. वो ये न्यूज आई है कि वो कल खुलेंगे. 8 स्कूल्स इन डरहम रीजन और 1 स्कूल टोरंटो के अंदर जो है ये बंद थे. एजैक्स के अंदर और विटवी में, पिकरिंग में, ऑक्सब्रिज में काफी सारे स्कूल्स जो थे ये बंद थे. तो अब खबर आई है कि कल खुलेंगे. टोरंटो ने बहरहाल आज कहा था कुछ स्कूलों ने टोरंटो के कि आज सुबह, आई मीन एज ऑफ टुडे ट्यूसडे को कुछ स्कूल उन्होंने आज खोल दिए थे अपनी वेबसाइट पर. उन्होंने कर दिया था कि कल बंद थे लेकिन आज वो जो है खुल गए. तो अभी बहरहाल वो काम हो रहा है क्योंकि पावर आउटेज की वजह से स्कूल्स नहीं खोले जा सकते थे, इसके ऊपर काम हो रहा है. अच्छा जी, अब हम आते हैं जी एंगस रीड के इंस्टीट्यूट के उस पोल के बारे में जिसके बारे में जो माजिद भाई ने अभी जिक्र किया है. एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी ग्लेयरिंग क्योंकि जाहिर है कि इन्फ्लेशन आपको पता ही है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है. ग्रोसरी बिल्स बेतहाशा ऊपर चलते जा रहे हैं. एंगस रीड ने तकरीबन 2000 लोग 1992 जो कनेडियन एडल्ट्स हैं उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे हाउस होल्ड फाइनेंसिंग जो है, फाइनेंसिस जो है उनकी क्या हालत है. और ये जो बैंक ऑफ कनाडा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसके बारे में बता रहा है विच इज 31 ईयर हाई, उसके बारे में तुम क्या कहते हो. तो 49% ने कहा कि वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट टू फीड आवर फैमिलीज क्योंकि 8.7% फूड प्राइसेस जो हैं ईयर ऑन ईयर मार्च में ऊपर गई हैं. 36% ने कहा कि ये जो प्राइसेस हैं अप हैं अप्रैल 36% तकरीबन ये प्राइसेस अप हैं अप्रैल 2019 से. इसके अलावा 36% लोगों ने कहा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई है पिछले साल से. 24% लोगों ने कहा कि हमारी कंडीशन कुछ इंप्रूव कर गई है पिछले 12 साल में. 39% ने इसके अलावा कहा कि हमारे फाइनेंसेस जो हैं वो तो सेम ही हैं लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ऊपर चली गई है. 28% ने कहा कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पिछले साल से बहुत खराब हो गई है. 24% ने कहा कि कुछ इंप्रूव की है. इसके अलावा जो है वो और भी जो हैं एक्सपेक्टेशंस जो हैं इनकी हालतों के बारे में, लोगों के बारे में, वो और भी कुछ इसी तरह के हैं, मिले जुले हैं. ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमारी हालत और हमारा फाइनेंशियल जो है सेटअप है वो खराब होता जा रहा है, यानी कि लास्ट ईयर से ज्यादा भी खराब हो गया जबकि हम पेंडेमिक में थे. तो इतनी हेल्प भी लोगों को जो है मिली थी. मेक्सिको से जनाब बड़ी आज अफसोस की खबरें आई हैं. 2 बार्स थे वहां पे और वहां पे लोग काफी भरे हुए थे उस बार्स के अंदर. तो वहां पे कुछ ग्रुप्स ने आके फाइटिंग की, शूटिंग की और उसमें जो है तकरीबन 10 लोग मर गए, उसमें से 8 जो थी वो थी. और अभी अभी न्यूज एक और भी आई थी कि एक और की डेथ हो गई है तो 11 हो गए हैं ऑल टुगेदर. और ये जो वहां पे ड्रग कार्टल्स हैं स्पेशली ये सेंटा रोजा डिलिमा और ये जो इधर दूसरे प्रोविंसेस के अंदर गुनानजुआटा के अंदर जो बहुत सालों से ये अपनी टर्फ के लिए फाइट कर रहे हैं ये उनके बीच में है. अच्छा तो ये एक था और दूसरा जो था जेलिस्को कार्टल था, इनके बीच में जब वो लड़ाई हुई तो उस गैंग वॉर में ये बेचारे जो हैं कुछ इनोसेंट लोग भी मारे गए. तो अब मेक्सिको की गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कहा है कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं. भाई ये तो आप हमेशा कह देते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरह के ये टेररिस्टों को करार वाकई सजा दी जाएगी. तो भई आप कब दोगे, कब से आपके मुल्क में गैंग वॉर्स चल रही हैं, कब आपने इनको पकड़ना है, कब खत्म करना है. बहरहाल जी
जब शूटिंग की आप बात कर रही हैं अभी ब्रेकिंग न्यूज
ये जो टेक्सास के अंदर हुई है. हाँ जी हाँ जी, वो हमारी उस पर चल रही है.
14 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर इज डेड एंड दे आर किल्ड इन टेक्सास शूटिंग. एक एलिमेंट्री स्कूल में ये हुआ है और 18 साल का एक बच्चा ही मैं कहूंगा उसको, 18 साल का बच्चा है जो शूटर है वो उसको भी मार दिया गया है. ये गवर्नर ग्रेग एबट जो है टेक्सास के उन्होंने ये ऐलान किया है कि यस अभी बहुत सारे जो लोग जख्मी हैं उसके अंदर उन लोगों के भी उसमें भी कई लोग की हालतें खराब हैं. तो हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए कि भाई खैर खैरियत से अपने घरों को जाए.
ये ज्यादा ही बढ़ गया अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा. अभी कुछ दिन पहले भी हमने ये इधर बताया था तो अभी ये हमने अभी देखी थी ब्रेकिंग न्यूज जो थी ये चल रही थी. अच्छा जी ये अब देखें ना, जहां पे आपका इंटरेस्ट होता है वहां पे आप प्यार दिखाने पहुंच जाते हैं. जब आपका मतलब निकल जाता है तो फिर आप कैसे कतर को साइडलाइन किया रहा है जी अमेरिका, اور اب جو ہے جا جا کے جفیاں ڈال رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بڑی محبتیں دکھائیں ہیں جی, جیسے کہ وہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی جن کو اب آپ کہتے ہو خطرناک حقانی نیٹ ورک کے ملے, ان کے ساتھ آپ وائن اور ڈائن کرتے تھے, اب وہ آپ کے لیے خطرناک ہو گئے ہیں. آج کل پاکستان کو پھر سے سائڈ پہ لگایا ہوا ہے جی. اب سعودی عربیہ کے خلاف جی بڑے بیان دیے جب بائیڈن گورنمنٹ آئی نا, جب یہ الیکشن ٹریل پہ بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سعودی عربیہ ہے یہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے یہ سارا کچھ جو یمن میں ہو رہا ہے, اور یہ ٹرمپ صاحب کی بڑی بیڈ جو تھی وہ تھی پالیسی تھی, یہ ان کو سعودی عربیہ والوں کو ویپنز دیتے تھے, ہم نے بالکل ان کو ویپنز نہیں دینے, ہم نے ان کو ٹائٹ کر دینا ہے. لڑکے جنہوں نے آپ پہ 9/11 میں اٹیک کیا وہ تھے سعودی, آپ نے جا کے اٹیک کر دیا عراق میں, عراق کو آپ نے برباد کر دیا. تو مطلب ہے کیسی یہ مکسڈ اپ جو ہے نا, یہ جمبلڈ اپ مائنڈ جو ہے آپ لوگوں کا, یہ کیسی پالیسیز ہیں کیا. اب جی پھر سے پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں محبت کی سعودی عربیہ سے, کیونکہ کوئی کام ہوئے گا پھر سے امریکہ کو. کانگریس کے آج بہت سارے ممبرز ریپبلکن ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں آج سعودی عربیہ ریاض میں پہنچے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں پرنس محمد بن سلمان جو ہیں ان کے ساتھ آئی تھی. ان کے جو ریپبلکن ریپرزینٹیوز تھے اٹا سے کرس سٹورٹ, پینسلوینیا سے گائے رشن تھیلر, مشیگن سے لیزا میکلین, اور بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ایم بی ایس کے ساتھ, اور کہا جی ہماری تو آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے, ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو, اب ان کو پوائنٹ آف ویو سمجھ آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ کا جو یمن کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے, کیونکہ اس سے کچھ دن